بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت ایوم اس کے انواع سے کریں گے۔ آج آپ پوتر قرآن مجید کے سورہ حجرات کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان لانے والوں، بہت سی سوچوں سے بچو کہ کچھ سوچیں پاپ ہوتی ہیں، اور ٹوہ میں مت رہو، اور نہ تم میں سے کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی نندہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا ماس کھائے؟ تمہیں سوئم اس بات سے گھن آئے گی، اور ایشور سے ڈرتے رہو، نسندیہ ایشور توبہ سویکار کرنے والا اور دیاوان ہے۔ ہے لوگو، ہم نے تمہیں ایک پرش و استری سے پیدا کیا، اور تمہاری بہت سی جاتیاں اور ونش بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे बीच सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो ईश्वर से सबसे अधिक भय रखता है। निसंदेह ईश्वर अत्यंत ज्ञानी और जानकार है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.ir/hi और व्हाट्सएप पर संपर्क के लिए हमारा नंबर है 0098-9035065492। श्रोताओं, फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमारी खबरें और अन्य सामग्री देख सकते हैं। श्रोताओं, आज शुक्रवार है। मेहर की 16, रबी अव्वल की 1 और अक्टूबर की 8 तारीख। इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के बाद आपका मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार हमारी समय की सभा से प्रसारित किया जाएगा। और श्रोताओ, सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर। तो यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओं, सुनिए विश्व समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। अफगानिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका होने से 50 नमाजियों की जानें चली गईं। ईरान ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। बैरूत यात्रा पर गए ईरान के विदेश मंत्री की हिजबुल्लाह के प्रमुख से महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। OIC ने भारत के असम में मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा को संगठित हिंसा करार देते हुए भारत सरकार से कहा कि जिम्मेदाराना रवैया अपनाए। इराक में 10 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से 2 दिन पहले सुरक्षा बलों और सैनिकों ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अफगानिस्तान के पूर्वोत्तरी प्रांत कुंदूज के एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 50 लोगों की जानें चली गईं, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। तालिबान के मंत्री जबीउल्ला मुजाहिद ने ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए पुष्टि की है कि धमाका कुंदूज की एक मस्जिद में हुआ, जिसके नतीजे में शिया समुदाय के बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत से घायल हो गए। मुजाहिद ने बताया कि तालिबान फोर्सेस की स्पेशल यूनिट घटनास्थल पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अफगान मीडिया संस्थान खामा प्रेस के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद से कुंदूज में होने वाला ये पहला धमाका है। धमाके की जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद दाइश के हमलों में तेजी देखी गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अफगानिस्तान के कुंदूज शहर में शियों की मस्जिद पर जुमे की नमाज के दौरान होने वाले आतंकी हमले की निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों से सहानुभूति जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी रूप में अंजाम दिया जाने वाला आतंकी अमल निंदनीय है। ज्ञात रहे कि कुंदूज की मस्जिद में नमाज के दौरान होने वाले धमाके में मरने वालों की संख्या 50 तक पहुंच चुकी है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। घायलों की संख्या दर्जनों में है। लेबनान के दौरे पर गए इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने बैरूत में लेबनान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकातें की, जबकि उनकी मुलाकात हिजबुल्ला के प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह से भी हुई। मुलाकात में सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि ईरान सच्चा घटक है। ईरान ने साबित कर दिया कि वो सच्चा घटक और वफादार दोस्त है जो अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सैयद हसन नसरुल्लाह के इस बयान में दरअसल अमरीका और पश्चिमी देशों के रवैये की ओर इशारा भी है, जो अपने घटकों को कठिन हालात में अकेला छोड़ देते हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल अफगानिस्तान में नजर आई। सैयद हसन नसरुल्लाह ने लेबनान के आर्थिक और ऊर्जा संकट के बारे में कहा कि आपसी सहयोग से लेबनान इस संकट से बाहर निकल जाएगा। इस मुलाकात में हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने आश्वासन दिया कि ईरान हर क्षेत्र में लेबनान की मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि उनका देश वियना वार्ता के तुरंत आरंभ किए जाने का इच्छुक है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि उनका देश डिप्लोमेसी को ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को सीमित करने का बेहतरीन विकल्प समझता है। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार नेड प्राइस ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी सरकार वियना में परमाणु वार्ता के तुरंत नए सिरे से आरंभ किए जाने की इच्छुक है। उन्होंने इस संबंध में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हालिया सप्ताहों में हमने ईरानी अधिकारियों से बारंबार सुना है कि वे वार्ता के जल्द से जल्द आरंभ किए जाने की अपेक्षा रखते हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी शुरू किए जाने के संबंध में हमारी और उनकी बात एक ही होगी। उन्होंने कहा कि कूटनीति का रास्ता यथावत खुला है और कूटनीति ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को सीमित करने का बेहतरीन विकल्प है। ईरान के विदेश मंत्री ने बैरूत में अपने लेबनानी समकक्ष से भेंटवार्ता में कहा कि ईरानी कंपनियां लेबनान में मात्र 18 महीने में 2 बिजली घर बनाने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि अगर लेबनान मांग करता है तो ईरानी कंपनियां अपने अनुभवों का लाभ उठाकर बैरूत बंदरगाह का भी निर्माण करने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान और लेबनान की आर्थिक समिति की बैठक में जो सहमति हुई उसके आधार पर ईरान समस्त क्षेत्रों में लेबनान की सहायता के लिए तैयार है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने बल देकर कहा कि लेबनानी जनता सेना सरकार और प्रतिरोध के अंदर ज़ायनी शासन को चुनौती देने और प्रतिरोध करने की क्षमता मौजूद है। इसी प्रकार उन्होंने शहीद इमाद मुगनिया, शहीद जनरल कासिम सुलेमानी और शहीद अबू महदी अल मुहंदिस के मार्ग में शहीद होने वालों पर दुरूद भेजा। उन्होंने कहा कि हम केवल फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान करते हैं, हमने क्षेत्रीय वार्ता की बात की है और वार्ता के माध्यम से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं व मामलों का समाधान किया जा सकता है। ईरान और सऊदी अरब के मध्य होने वाली वार्ता के बारे में उन्होंने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच होने वाली वार्ता ने अब तक अच्छी प्रक्रिया तय की है और हम वही वार्ता चाहते हैं जिससे ईरानी राष्ट्र के अधिकारों की पूर्ति हो। मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC ने भारत के असम राज्य में मुसलमानों पर हुई बर्बरतापूर्ण हमले की निंदा क्षमा कीजिएगा मुसलमानों पर हुए बर्बरतापूर्ण हमले की निंदा करते हुए इसे संगठित हिंसा और उत्पीड़न करार दिया है। इस हिंसा में जिसमें एक तरफ पुलिस थी, 2 मुस्लिम नागरिकों की जाने गईं और एक के शव पर वो पत्रकार बड़े वहशियाना तरीके से कूद रहा था जिसे पुलिस अपने साथ वीडियोग्राफी के लिए लेकर गई थी। गुरुवार को संगठन के ट्विटर हैंडल से जारी होने वाले बयान में OIC ने घटना की मीडिया कवरेज को शर्मनाक बताया और भारत सरकार से अपील की कि जिम्मेदाराना रवैया अपनाए। बयान में भारत की मोदी सरकार से अपील की गई है कि वो अल्पसंख्यक मुस्लिमों को सुरक्षा उपलब्ध कराए और उनके बुनियादी सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का सम्मान करे। बयान में यह भी कहा गया है कि किसी भी राष्ट्रीय संप्रभुता के भीतर किसी विवाद को हल करने का सर्वोत्तम मार्ग आपसी बातचीत है। अभी भारत सरकार की ओर से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत में पुलिस का कहना है कि चंडीगढ़ में ब्रितानी डिप्टी हाई कमीशन में तैनात महिला कूटनीतिक का कथित यौन उत्पीड़न हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत के अनुसार 60 साल की डिप्लोमेट जिन्होंने जारी वर्ष फरवरी महीने में अपना पद संभाला है, उन्होंने बताया कि ये घटना तब हुई जब वो सुबह 6:30 बजे अपने आवास से निकलकर चंडीगढ़ लाइन टेनिस एसोसिएशन की ओर पैदल चलते हुए जा रही थी। महिला कूटनीतिक ने आरोप लगाया कि वो होटल माउंट व्यू के करीब चौरंगी के आसपास मौजूद थी कि एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर आया और उसने उन्हें प्रताड़ित किया। عراق میں سنسدیہ چناؤ کے لیے آج صبح سے سرکشا بلوں اور سینا سے جڑے کرمچاریوں اور ادھیکاریوں کی ووٹنگ شروع ہو گئی جو شام تک چلتی رہی۔ سنسدیہ چناؤ کے لیے متدان 10 اکتوبر کو ہونا ہے، لیکن سرکشا بلوں اور سینا سے جڑے لوگوں کا متدان شکروار کو ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ شرنارتھیوں اور قیدیوں کے متدان کے لیے بھی آج کا ہی دن نردھارت کیا گیا۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا جا رہا ہے کہ متدان کیندروں پر لائنیں ہیں، جبکہ دوپہر بعد ادھک متدان ہوا۔ متدان صبح 7 بجے شروع ہوا اور شام 6 بجے تک جاری رہا۔ سیریا کے ودیش منتری نے کہا ہے کہ پشچمی آرتھک پرتیبندھ کا پریوگ کر کے آتنکوادی ہتھیاروں کی طرح اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ سماچار ایجنسی ایرنا کی رپورٹ کے انوسار فیصل مقداد نے گروار کو کہا کہ دمشق نے آتنکواد کے خلاف لڑائی میں جو اپلبدھی حاصل کی ہے وہ سیریا کے سمبندھ میں انتراشٹریہ استر پر راجنیتک واتاورن میں پریورتن کا کارن ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیریا پر اتکرمن کا مول لکش اس دیش میں راجنیتک واستوکتا کو بدلنا تھا، پرنتو اس کام کے لیے جو شڈینتر رچے گئے تھے سیریا نے ان سب کو ناکام بنا دیا۔ سیریا کے ودیش منتری نے کہا کہ دمشق کے سمبندھ میں انتراشٹریہ استر پر جو درشٹی کون پریورتت ہوا وہ سیریائی جنتا و لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ فلسطین کے پرتیرودھک سنگٹنوں نے زائنی شاسن کو چیتاونی دی ہے کہ اس نے مسجد الاقصی کے بھیتر جا کر اپاسنا کرنے کی یہودیوں کو اجازت دے کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ یہ اسلامی پوتر استھلوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ فلسطینی سنگٹنوں نے ایک سنیک بیان میں کہا کہ اسرائیل کی عدالت نے مسجد الاقصا کے بھیتر اپاسنا کی یہودیوں کو انمتی دی ہے، جو بے حد نندنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے انتراشٹریہ سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
دوستو، میں ہوں روش زیدی اور آپ کا سواگت ہے راجنیتک چرچا کے دینک کاریکرم میں۔ آج کے کاریکرم میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے عراق کے آگامی سنسدیہ چناؤ کے بارے میں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اور پھر بات کریں گے شرنارتھی فلسطینیوں کے سمبندھ میں امریکہ کی شڑینتکاری یوجنا کے بارے میں،
خطها ونهجها الصحیح،
اور انت میں چلیں گے بھارت، جہاں کشمیر کی تازہ استھتی کے بارے میں ہمارے سمباددات آپ کو بتائیں گے۔
بھارت پرشاست جموں کشمیر میں ہنسک گھٹناؤں کا کرم جاری ہے۔
تو دوستو، سب سے پہلے چلتے ہیں عراق کے سنسدیہ چناؤ کی تیاریوں کو دیکھتے ہیں، اور اس دیش کے ورشٹھ دھرم گرو آیت اللہ سیستانی کے اس خاص سندیش کے بارے میں جانتے ہیں جس کی چرچا ہو رہی ہے۔ اس سمبندھ میں پوتر نگر کربلا سے IRIB کے سمواددتا بیرا وند ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی محمد مہندی کی آواز میں۔
عراق کے ورشٹھ شیعہ دھرم گرو آیت اللہ سیستانی کی اور سے عراق میں ہونے والے آگامی چناؤں کے سمبندھ میں ایک سندیش جاری کیا گیا ہے، جس سندیش کو پوتر نگر کربلا میں عام لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
عراق کے ورشٹھ شیعہ دھرم گرو نے دیش میں ہونے والے چناؤ میں جنتا سے بھاری سنکھیا میں بھاگ لینے کا آہوان کیا ہے۔ آیت اللہ سیستانی کی اور سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی اور امیدوار کا سمرتھن نہیں کرتے ہیں، متداتا اپنے اپنے متادھکار کا پریوگ کریں اور چناؤ میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیں۔ عراق میں چناؤ بالکل سر پر ہیں، دیش کی سنسد بھنگ کر دی گئی ہے۔ इस समय देश के अधिकारियों का सारा ध्यान चुनाव पर केंद्रित है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं ताकि देश में चुनाव पूरी शांति से आयोजित हो सके और इराकी जनता भारी संख्या में इसमें भाग ले सके। एक इराकी नागरिक का कहना है कि ये बहुत अच्छा अवसर है जिसमें हम अपने प्रतिनिधियों का चयन करके देश के भविष्य को बेहतर बना सकेंगे। इराक के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि रविवार को होने वाले चुनाव के लिए 8273 मतदान केंद्रों को बनाया गया है। मत पेटियां उच्च सुरक्षा समिति की निगरानी में चुनाव अधिकारियों की देखरेख में उसी दिन मतदान केंद्रों पर पहुंचाई जाएंगी।
इंतखाबात अमल जारी।
एक इराकी धर्मगुरु का कहना है कि चुनाव एक बेहतरीन कार्य है, केवल हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सही और योग्य व्यक्ति का चयन करें, क्योंकि हम राष्ट्र के भविष्य को कुछ वर्षों के लिए चुने गए लोगों के हाथों में सौंपते हैं। इराकी स्वयं सेवी बल हश्दुश शाबी को चुनाव में सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी से हमलावर अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई है। ये कारण है कि इराक के बद्र संगठन ने बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास द्वारा हश्दुश शाबी के चुनाव कार्यक्रमों को लेकर किए जा रहे हस्तक्षेप पर चेतावनी देते हुए कहा है कि विदेश सेना के पास इराक से वापस जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। एक अन्य इराकी नागरिक का कहना है कि हमलावरों और अनजान लोगों से मुकाबला चुने गए प्रतिनिधियों की प्राथमिकता होनी चाहिए और हम इसी उम्मीद से चुनाव में भी भाग ले रहे हैं। इराक में रविवार को होने वाले चुनाव में 2,50,00,000 लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये चुनाव बहुत ही निर्णायक है जिसमें इराकी जनता अपने देश के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण फैसला लेगी और अपने एक वोट की मदद से हमलावर अमेरिका को इराक से बाहर निकाल फेंकेगी।
बेरामबान खबरगुजारी सदा व सीमा کربلا।
और अब चलते हैं सीरिया और बात करते हैं इस देश में रह रहे फिलिस्तीनी शरणार्थियों की। फिलिस्तीनी शरणार्थियों ने कहा है कि अमेरिका चाहे जितनी साजिशें कर ले, वे अपने अधिकारों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस बारे में दमिश्क से IRIB के संवाददाता हिसाम हेलाली एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी अहमद अब्बास की आवाज में।
पश्चिम की साजिशों के खिलाफ सीरिया में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने यह घोषणा की है कि वे कभी भी अपने अधिकारों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अलफतह के एक अधिकारी का कहना है कि हम सीरिया में स्थित कैंपों से ये घोषणा करते हैं कि प्रतिरोध ही केवल ऐसा रास्ता है जो अधिग्रहणकारी इसराइल को भगा सकता है। वहीं फिलिस्तीनियों के एक समूह ने दमिश्क में संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय सहायता को सशर्त बनाने की अमेरिकी योजना को स्वीकार करने की कड़ी निंदा की और कहा कि इस शर्त को तत्काल खत्म करना चाहिए। एक फिलिस्तीनी युवा का कहना है कि मैं सीरिया में जन्म लेने वाला फिलिस्तीनी हूँ, हम अपने देश फिलिस्तीन जरूर लौटेंगे। जिहाद इस्लामी के अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनकारी फिलिस्तीनियों ने UN महासचिव को अपना संदेश दे दिया।
47
फिलिस्तीनियों का ये संदेश है कि हमें हमारे अधिकारों से वंचित करने वालों के साथ मिलीभगत करने के बजाय फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद कीजिए ताकि दमिश्क और हलब के शिविरों में रहने वाले फिलिस्तीनी अपने घर लौट सकें। अनरवा से फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मिलने वाली मदद के लिए अमेरिका ने कई शर्तें लगाई, जिसमें एक शर्त यह है कि फिलिस्तीनी कभी अपने वतन न लौटने का वादा करें। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने अवैध अधिकृत फिलिस्तीन से बाहर रहने वाले फिलिस्तीनियों के गुस्से को भड़का दिया है। फिलिस्तीनियों को ये शर्त मंजूर नहीं।
इसाम हिलाली, खबरगुजारी सदा व सीमा, दमिश्क।
और अब रुख करते हैं भारत का और बात करते हैं भारत प्रशासित कश्मीर में, जहां केंद्र सरकार कश्मीर में सब कुछ अच्छा होने का दावा कर रही है, वहीं इस राज्य के आम नागरिकों का चैन और सुकून पूरी तरह छिन चुका है। आए दिन आम नागरिकों की बेरहमी से हत्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने भी कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम जारी है, जहां एक तरफ अज्ञात बंदूकधारियों ने 5 दिवस में 7 नागरिकों को मौत की घाट उतार दिया। वहीं पर कल शाम को एक घटना घटी जिसमें सुरक्षा बलों के हाथों एक आम नागरिक हताहत हुआ। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने इस हवाले से जो वक्तव्य जारी किया, उन्होंने कहा कि दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में उन्होंने एक वाहन को रुकने का इशारा किया, परंतु उन्होंने भागने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप गोलियां चलाई गई जिसमें एक नागरिक जिसकी पहचान यासिर अली के बतौर हुई हताहत हुआ। अगरचे जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि वो इस घटना की जांच करेंगे, परंतु जितने भी मेन स्ट्रीम दल हैं उन्होंने इस हत्या की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कोई भी आम नागरिक जब हताहत होता है तो उससे ये पता चलता है कि उनके घर वालों पर क्या बीती होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2 स्कूल टीचरों को हताहत किया गया और उन पर ये है कि वो अज्ञात बंदूकधारियों ने कार्रवाई अंजाम दी, परंतु जिस तरह सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है हम उसकी निंदा करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने इन दोनों घटनाओं के हवाले से पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
ये कौन सी इंसानियत है कि आप एक स्कूल टीचर को जिसका ना कोई लेना ना देना पॉलिटिक्स के साथ या किसी और चीज के साथ उसको इतनी बेदर्दी से मारते हो और यहाँ से बीजेपी की सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने जम्मू कश्मीर में हालात ठीक कर दिए हैं। पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं वो लोग। इतनी सख्ती करने के बावजूद, जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना हराम करने के बावजूद, वो यहाँ के लोगों की बेगुनाहों की जान बचा नहीं पाते हैं। रोज कुछ ना कुछ होता है। कल रात को भी वहाँ आपने सुना होगा अनंतनाग में किस तरह एक बेगुनाह को मार दिया गया और आप कहते हैं कि वो हम पे हमला कर रहा था, उगरना का लड़का। ये तो हालात जो है दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेवार बीजेपी की सरकार है, जिन्होंने 2019 से लेके उससे पहले भी 2019 5 अगस्त से लेके जो यहाँ पर वो पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पर स्टेप्स लेते हैं, जो इकदाम करते हैं, उसकी वजह से यहाँ हालात दिन ब दिन और बिगड़ रहे हैं। और ऐसी जो आज ये कल जो ये लेडी जिसके जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेरे ख्याल में कोई 4-5 साल का है, दूसरे कोई 7वीं जमात में बच्ची पढ़ती, कहाँ जाएंगे ये लोग। और ये हमारी सरदार जो हमारे भाई हैं, इन मुश्किल हालात में, इतनी तकलीफ देह हालात में ये लोग हमारे साथ यहाँ डटे रहे, बने रहे, आज उन पे भी अटैक हो गया, इसकी जितनी मजम्मत हो मुझे लगता है वो कम है।
इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के अध्यक्ष दिलबाग सिंह ने भी पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि जो घटना घटी है वो निंदनीय है और उन्होंने कहा कि जो भी इसमें आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सोशल फैब्रिक को तबाह करने का प्रयास है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से भाईचारा है उसको ये जख्म पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। दिलबाग सिंह ने कहा कि जो भी आरोपी होंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।
सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट पिछले रोड से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, दहशत और दहशत का एक मेल है जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे, उस तरह के इरादे से जहां पर हो रहा है। हम लोग को खेद है कि ये इंसिडेंट एक के बाद एक किस तरह के हुए जिसमें बेगुनाह लोगों की जाने गई है। हम लोग पहले जो केसेस हुए हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं और श्रीनगर पुलिस काफ़ी क्ल्यू उसमें हासिल कर चुकी है और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहां का लोकल अथॉस और वैल्यूज है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी।
इस बीच जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जिन्होंने ये घटना अंजाम दी है उन्हें बेफ्टिंग रिप्लाई दी जाएगी। उन्होंने कहा के आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच श्रीनगर में उस सिख टीचर की आज अंतिम संस्कार किया गया जिसके बीच सिखों द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन भी किया गया और उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। इस अवसर पर सिख प्रदर्शनकारी TRF नामी अलगाववादी संगठन के विरोध में भी नारे दर्ज कर रहे थे। इधर जम्मू कश्मीर के तमाम धार्मिक नेताओं ने एक बार फिर लोगों से आह्वान किया है कि वो आपसी भाईचारा कायम रखें। हुर्रियत के एक धड़े और जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने भी लोगों से एकता बनाने का आह्वान किया है। सिप्ट मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
दोस्तों, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ دوستو، ہماری آج کی سبھا کا انتیم کارکرم ہوگا وگیان کی ڈگر، لیکن اس سے پہلے پرستوت ہے کارکرم پتر سنسار۔
پتر سنسار۔
دوستو، کارکرم پتر سنسار میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں احمد عباس اور کارکرم میں ساتھ ہیں دیدی مریم مہردادی۔ ہمارا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، آپ کو پتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم کارکرم میں کمنٹس اور پتر شامل کر رہے ہیں، ای میل شامل کر رہے ہیں، اور آشا کرتے ہیں کہ آپ سکوشل ہوں گے اور ہمارا یہ کمنٹس کارکرم اور یہ جو پتر ہے وہ سن رہے ہوں گے۔ تو بھیا، سب سے پہلے میں ای میل سے شروع کر رہی ہوں
جی۔
بھوپال مدھیہ پردیش سے پی کے بینرجی لکھتے ہیں، آج آپ کی ویب سائٹ پر ارکائیو پر جا کر آپ کے کارکرم آن لائن سننے کی کوشش کی تو اپروکت ایرر دکھا رہا تھا، ڈاؤن لوڈ کرنے پر کنیکشن ناٹ پرائیویٹ بتا رہا تھا۔ کرپیا جانچ کر بتائیے کہ یہ سمسیا آپ کے ویب سائٹ میں ہے یا بھارت کی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی میں، یہ بتائیے۔ ویب سائٹ سے ٹیکسٹ برابر پڑھنے کو مل رہا ہے، کیول آڈیو پروگرامز میں سمسیا ہے۔
جی دیدی، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کس وبھاگ سے اس کے بارے میں
جی بتانا ہے،
لیکن اور آپ نے نشچت روپ سے بات کی بھی ہوگی
جی۔
آرکائیو کی جو سمسیا ہے، وائس کی جو سمسیا ہے، اسے دور ہونا ضروری ہے، چونکہ ہمارے بہت سارے شروتا وہ ہیں کہ جو پرسارن کے سمے نہیں بلکہ بعد میں کارکرم سن سکتے ہیں اور آرکائیو سے ہمارا کارکرم سنتے ہیں، تو یہ سمسیا دور ہونی چاہیے
جی۔
ویب سائٹ پر ٹیکسٹ کی جہاں تک بات ہے تو ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ اپلوڈ ہوتے رہیں نئے ٹیکسٹ اور نئی خبریں، الگ الگ سامگری، اور وہ ہمارے پڑھنے والوں تک، ہمارے پاٹھکوں تک وہ چیزیں پہنچتی رہیں
جی۔ تو بینرجی، آپ نے سنی لیا ہوگا، انشاءاللہ آپ کو یہ سمسیا نہیں ہوگی۔ ابھی مرزا عاصم قاسم لکھتے ہیں کہ واٹس اپ پر ہمیں لکھ بھیجائے کہ اصلی اسلام کے لیے میرے واٹس اپ گروپ پر جائیں، یہ گروپ میرے دوارا بنایا گیا تھا اور میں نے اسے ایک دوست کے انوروھ پر ہٹا دیا تھا، اس بیچ میرے گروپ کو کسی نے ہیک کر لیا ہے، مجھے کھما کریں پتہ لگانے کے لیے، لیکن میں یہ سوچ کر چپ رہا کہ شاید اس سموہ کو اللہ دوارا جیوت رکھا جانا چاہیے، اور آپ کی ویب سائٹ کی وجہ سے میں نے خود کو اس سموہ میں پوری طرح سے سچے اسلام میں شامل کر لیا ہے۔
بہت مہتوپورن وشے ہے اور بہت الگ ٹائپ کا وشے
جی
ہے کہ یہ گروپ کا ہیک ہونا اور اس کو جیوت رکھنے کی کوشش۔ ہم تو اس بارے میں یہ بات کرنا چاہیں گے کہ
اسلام، انہوں نے زیادہ ہماری ویب سائٹ کے بارے میں لکھا ہے جی
جی، ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ اسلام کا صحیح ارتھوں میں، صحیح روپ میں، صحیح پرکار سے نالج ہونا، اس کی جانکاری ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک آدرش جیون شیلی پیش کرتا ہے۔ اگر اسلامی نیموں اور شکشاؤں کو صحیح پرکار سے سمجھا جائے تو جیون کو بھی آدرش بنایا جا سکتا ہے۔ اسلام کی شکشاؤں کو، اسلام کے نیموں کو لوگوں تک جتنے صحیح روپ میں، صحیح ارتھ میں، صحیح ڈھنگ سے پہنچایا جائے وہ کم ہے، اور اس میں جتنی بھی کوششیں کی جائیں وہ سراہنیہ ہیں۔ تو دیدی، کارکرم کے اس بھاگ میں آپ سنسکرتی سے جڑی کوئی خبر سناتی ہیں
جی،
تو دیکھتے ہیں کہ آج کے کارکرم کے لیے آپ نے،
آج ہم ایران میں اطالوی دوتاواس فرام تہران ٹو روم جرنی ٹو آرٹ نامک ایک پریوجنا پر بات کر رہے ہیں
جی۔
اور یہ جو یہ پریوجنا ابھی چل رہی ہے جو ایرانی اور اطالوی کلاکاروں کے جیون پر کیندرت ہے، جن کا دونوں دیشوں میں ادھیان یا کام کرنے کا اتہاس ہے، और यह संग्रह 7 ईरानी और इतालवी कलाकारों के कार्यों और कलात्मक जीवन से संबंधित है, जिनमें बीजन बसीरी, मोहसिन वजीरी, खुसरो खुर्शीदी, बहमन मोहसेस, पियर पापलो पट्टी, अकबर मिखैक और विंसेंजो बियानचीनी शामिल हैं
जी।
तो तेहरान में इतावली राजदूत यूसेफ पेरो ने IRNA को बताया है कि
इतावली राजदूत
जी इन्होंने बताया कि एक पुल के रूप में ईरान और इटली को ये जोड़ते हैं। उनकी कलात्मक गतिविधि की प्रक्रिया दोनों देशों के बीच कलात्मक संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है। इस संग्रह का प्रत्येक एपिसोड लगभग 15 से 20 मिनट का है और ईरान में इतालवी दूतावास द्वारा इंटरनेट पर प्रकाशित किया जाता है। ईरान में इतालवी दूतावास की अन्य गतिविधियों के बारे में उन्होंने कहा कि साहित्य के क्षेत्र में कुछ परियोजनाएं चलाई गई हैं। हाल ही में इतालवी कवि और लेखक दांते अलीघियरी के लिए उनके 700वें जन्मदिन के अवसर पर एक समारोह आयोजित किया गया था। पेरो ने ईरान में इतालवी दूतावास के भविष्य की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि दूतावास कई महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों को आयोजित करने की योजना बना रहा है। कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक और कलात्मक क्षेत्र भी हैं जिन पर भविष्य में ध्यान केंद्रित करेंगे।
जी, बहुत अच्छी खबर है दीदी। मैं बस यहाँ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि तेहरान में इतालवी दूतावास तेहरान की एक सड़क है नोफिल्लो शातो जिस पर स्थित है, और इसी सड़क पर बहुत सारे दूतावास जैसे ब्रिटेन का दूतावास, रशिया का दूतावास, फ्रांस का दूतावास, वेटिकन का दूतावास और भी कई देशों के दूतावास,
पूरे दूतावास का रोड है।
जी
जी।
और दीदी, अब बारी है कमेंट्स की। कार्यक्रम के सिलसिले में आप कुछ कमेंट्स
लाती हैं। मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो ईरान का कर्ज अदा करने के लिए तैयार हुआ ब्रिटेन, विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान प्रतिबद्धताओं पर अमल दोनों देशों के संबंधों की बहाली का एकमात्र रास्ता। इस पर मेहरदाद लिखते हैं, अरब डॉलर का डोम ज़ायनियों के BS की मदद करता है क्योंकि ईरान का डर है। उस डर को तब तक बनाए रखें जब तक वे धमकियों को रोक नहीं देते। ये एक डूबता हुआ साम्राज्य है जो हर हाल में चीन की आर्थिक प्रगति से कुचला जा रहा है।
ब्रिटेन की जहां तक बात की जाए तो ब्रिटेन वास्तव में पतन के रास्ते पर गया। जितना बड़ा साम्राज्य था, अलबत्ता वो बहुत बड़ा साम्राज्य अन्याय पर आधारित था, दूसरे देशों पर जुल्म करके और अन्याय करके इसका विस्तार किया गया था, तो वो पतन का शिकार हुआ और सिमटते सिमटते बहुत सिमट गया। चीन की जो बात कही है वो भी आज की एक ज़मीनी सच्चाई है कि चीन एक तेज़ी से आगे बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है जिसके बारे में अनुमान है कि कुछ वर्षों बाद वो दुनिया की पहली आर्थिक शक्ति हो जाएगा। चीन अमेरिका को भी पीछे छोड़कर ब्रिटेन तो जाहिर है उससे काफ़ी पीछे रहेगा
जी। इसराइली जासूसी प्रोग्राम पेगासस से 5 फ्रांसीसी मंत्रियों की जासूसी। इस पर वहीद रजाई लिखते हैं, खशोगजी और बेजोस दोनों वाशोपो इसी तरह पेगासस द्वारा किए गए थे। एक की मौत हो गई और दूसरे को तलाक में अरबों का नुकसान हुआ। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पेगासस की सेवाओं का उपयोग करने के लिए MBS और MBZ दोनों इसराइल ब्लैकमेल के अधीन हैं। मोसाद के पास जो कुछ वे सुन रहे थे उसका ऑडियो है। मुझे संदेह है कि जनरल सुलेमानी दल का भी स्वादी पेगासस द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा था।
पेगासस तो श्रोताओं को अच्छी तरह पता है, चूंकि एक लंबे समय से चर्चा में है ये मुद्दा। इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर है और इसराइल इसकी मदद से लोगों की जासूसी करता है, मंत्रियों की, राजनेताओं की, पत्रकारों की, कार्यकर्ताओं की, और बहुत बड़ी संख्या में नंबर लीक हुए हैं जिनकी जासूसी इसराइली सॉफ्टवेयर के ज़रिए होती रही है। उसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में अभी वो नंबर्स मौजूद हैं जिनकी जासूसी की गई है, और ये मुद्दा बहुत सारे देशों में विवाद का मुद्दा बना हुआ है। इसराइल इसकी जड़ है। इसराइल इस तरह के कर्मों में, कृत्यों में माहिर है, वो बड़ा पुराना उसका रिकॉर्ड है। और श्रोता बारी है किसी एक श्रोता के विचार सुनने और जानने की। देखते हैं कि दीदी ने इस सप्ताह के लिए किसका चयन किया है।
जी, और रैया उत्तर प्रदेश से ये हमारे पुराने श्रोता हैं, कालका प्रसाद केसरी। तो आइए इनके विचार सुनते हैं।
मेरा नाम कालका प्रसाद केसरी है, मैं मोहल्ला परवीन दरवाजा और रैया का रहने वाला हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत में चलता है। मैं तेहरान रेडियो है मार्च से सुन रहा हूँ, मार्च 17। मुझे है आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, जो उसमें है आपका वो सैर करने वाला प्रोग्राम है जिसमें एक पार्क के बारे में बताया गया,
जी
मुझे बहुत पसंद आया। और है भूल के बारे में जो डिटेल दिया गया वो मुझे पसंद है। और करबला में जो है करीब एक महीना अभी मुहर्रम में जो आपका प्रोग्राम चला, मुझे बहुत ही पसंद आया
जी।
कि वहाँ पर इस तरह से बयान करते हैं कि जैसे करबला की घटना आज ही हो रही है, वो है रो करके है, सुनाते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। हाँ जी, और उसका जो फांसी का प्रोग्राम होता है हर सैटरडे को, उसमें भी है हम सुनते हैं, और फांसी लैंग्वेज भी थोड़ी सीख रहे हैं। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम मुझे बहुत बेहतरीन लगता है, इसलिए मैं सुनता हूँ।
तो दीदी, अब ऐसा लगता है कि समय हमारे पास इतना नहीं है
जी,
कि आप कोई कमेंट शामिल करें और उस कमेंट का जवाब दिया जाए
जी।
लेकिन हम इतनी बात श्रोताओं से कर सकते हैं कि श्रोता अपने विचार हमें ज़रूर भेजें और कार्यक्रमों के बारे में सुझाव ज़रूर हमें दें, इससे हमें मदद मिलती है कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में। श्रोताओं को हम ये बताना चाहेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे जो हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हैं, उसके ज़रिए हमारी ख़बरें उन तक पहुंचती रहती हैं। और तो हमारे ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन करें, ये ग्रुप्स की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है चूँकि श्रोता इसमें ऐड होते जा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रक्रिया और भी तेज़ होगी, श्रोताओं तक हम इस तरह डायरेक्ट खबरें पहुँचा सकते हैं और पूरे टाइम पहुँचा सकते हैं।
तो भैया, जब इनको खत लिखना है, व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना है, तो मैं पते बता दूं?
जी बिल्कुल, आप पते बता दीजिए और व्हाट्सएप का नंबर भी बता दीजिए।
जी, व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 00989035065492।
हमारी खबर के नीचे लिंक भी रहता है जिसे क्लिक करके वो हमारे श्रोता, हमारे पाठक व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं
जी। और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। और ईमेल आईडी भी बताते चले, ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir।
तो श्रोताओं, इसी के साथ अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहरदादी को अगली मुलाकात तक अनुमति दीजिए।
खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। विज्ञान की डगर।
दोस्तों, कार्यक्रम विज्ञान की डगर की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम नैनो तकनीक से शरीर के तरल पदार्थों में दवा का मापन और रक्त परीक्षण के साथ कैंसर का पता लगाने की संभावना के विषय पर चर्चा करेंगे। मरियम मेहर दादी और मोहम्मद अली गुम्मी का सलाम स्वीकार कीजिए।
ईरान के यासूज विश्वविद्यालय के शोधकर्ता नैनो सॉर्बेंट का निर्माण करने में सफल रहे हैं, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाली दवा की बाकी बची मात्रा को निर्धारित करती है और खून या पेशाब में ब्लड शुगर की मात्रा को आसानी से निर्धारित करती है। इस शैली से प्रयोग होने वाली दवा के स्तर और डोज का पता लगाया जाता ताकि मरीज के जल्दी स्वस्थ होने के बारे में दवा के साइड इफेक्ट का पता लगाया जा सके।
ब्लड शुगर का लेवल शरीर में तब बढ़ता है जब पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता या फिर शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता। हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, तनाव और सुबह में थकावट जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसके कारण थकान, लगातार पेशाब आना, सिर दर्द, आँखों की रोशनी धुंधली होना, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, बार बार प्यास लगना और वजन घटना शुरू हो जाता है। ब्लड शुगर का लेवल शरीर में तब बढ़ता है जब पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता या फिर शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता।
ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाली दवाओं में से एक गिलबेनटोटल है। गिलबेनटोटल 5mg या 2mg टैबलेट एंटी डायबिटिक ड्रग्स के नाम से जाने वाली दवाओं की श्रेणी से संबंधित है। ये दवाओं का एक कम्बिनेशन है जिसे वयस्कों में टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डायबिटीज के लोगों में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है।
गिलबेनटोटल 5mg 2mg टैबलेट को भोजन के साथ लेना चाहिए। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे हर रोज एक नियमित रूप से एक ही समय पर लें। आपका डॉक्टर ये निर्णय लेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और ये समय समय पर बदल सकती है। ये आपके खून में शुगर के स्तर के अनुसार कैसे काम कर रही है इसके मद्देनजर डॉक्टर खुराक तय करेगा।
अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या आपके ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित है तो भी इस दवा का सेवन करते रहें। अगर आपने डॉक्टर से परामर्श किए बिना इसे लेना बंद कर दिया तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और आपको नुकसान हो सकता है, आपकी किडनी को नुकसान हो सकता है, अंधापन, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान का जोखिम हो सकता है। याद रखें कि यह दवा इलाज का केवल एक हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम भी शामिल होना चाहिए। आपकी जीवन शैली डायबिटीज को काबू करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है।
गिलबेनटोटल 5mg और 2mg टैबलेट का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट ब्लड ग्लूकोज स्तर में गिरावट है। सुनिश्चित करें कि आप लो ब्लड ग्लूकोज लेवल के लक्षणों जैसे कि पसीना आना, चक्कर आना, सिर दर्द और कपकपी को पहचानते हैं और आपको पता है कि इससे कैसे निपटना है। इसकी रोकथाम के लिए हमेशा नियमित रूप से भोजन करना और ग्लूकोज का तेजी से काम करने वाला स्रोत जैसे कि शुगर वाले खाद्य पदार्थ या फलों का जूस अपने साथ रखना जरूरी है। इस दवा को लेने पर देखे जाने वाले अन्य साइड इफेक्ट्स में मिचली आना, स्वाद में बदलाव, डायरिया, पेट में दर्द, सिर दर्द, एडिमा या सूजन, धुंधली नज़र, हड्डी टूटना और अपर श्वास नली में संक्रमण शामिल हैं। इस दवा से कुछ लोगों का वजन भी बढ़ सकता है।
इस दवा को लेने से पहले अगर आपको कभी हृदय रोग था तो अपने डॉक्टर को बताएं, ये उपयुक्त नहीं हो सकता है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए। आपके ब्लड शुगर लेवल की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए اور آپ کے ڈاکٹر آپ کے بلڈ سیل کاؤنٹ اور لیور فنکشن کی نگرانی کے لیے بلڈ ٹیسٹ کی صلاح بھی دے سکتے ہیں۔
یاسوج وشو ودیالے کے شودھکرتا نینو سربینٹ بنانے میں سفل رہے ہیں جو بلڈ شوگر کو نینترت کرنے والی دوا کی باقی بچی ماترا کو نردھارت کرتی ہے اور خون یا پیشاب میں بلڈ شوگر کی ماترا کو آسانی سے نردھارت کرتی ہے۔ اور اس یوجنا پر کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ خون یا پیشاب میں باقی بچی دوا کی ماترا کا منشیہ کے شریر کے لیے آوشک دوا کی ماترا اور اس کے پرینام میں مریض کے سوستھ ہونے کے بیچ گہرا سمبندھ ہے۔ چونکہ بایولوجیکل درو کی بناوٹ بہت جٹل ہوتی ہے، اسی لیے سیدھے طور پر دوا کا انومان لگانا سمبھو نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں اس شیلی کا پریوگ کیا جاتا ہے جسے یاسوج وشوودیالے کے شودھکرتاؤں نے بنایا ہے۔
یورپی میڈیسن سنستھا نے ایران کی دوا کمپنی کے لیے یورپی سنگھ کا EU GMP لائسنس جاری کر دیا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ یورپی یونین سے گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس EU GMP کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس سرٹیفیکیشن سے کمپنی یورپ میں انٹری کرنے کے ایک قدم اور قریب آ گئی ہے۔ یورپی وشیشجوں نے ایرانی کمپنی سنجین کے ماپدنڈوں کا جائزہ لیا اور اس کے بعد اسے یورپی یونین سے گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔
چین میں سب سے وشوسنیہ یورپی سنگھ GMP پرمانت کیپسول فارمولیشن نرماتاؤں اور آپورتیکرتاؤں میں سے ایک کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ جب یورپی سنگھ نے ایران کی اس دوا نرمان کمپنی کو اپنے مانکوں پر اترا ہوا دیکھا، یہاں تک کہ اسے انتراشٹریہ مانکوں کے انوسار پایا اور دواؤں کے نرمان میں کوئی بھی انتراشٹریہ مانک سے خالی نہیں ہے، تو اس نے یورپی یونین سے گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ یہ ایرانی کمپنی مدھیہ پورو اور اتری افریقہ کے کھیتر میں جیوک اتپاد کی پہلی کمپنی ہے جو یورپین یونین سے گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس کا سرٹیفکیٹ ہے۔
دوستو، ایران کے ٹیچر ٹریننگ کالج کے شودھکرتاؤں نے پریاورن پردوشن کو کم کرنے کے لیے پیروشیا پرسیکا نامک پیڑ کی جھاڑ جھنکھاڑ سے مولیوان نینو سوربنٹ کاربن ڈائی آکسائڈ بنانے میں سفلتا حاصل کی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ایک رنگہین تتھا گندہین گیس ہے جو پرتھوی پر جیون کے لیے اتیاوشک ہے۔ دھرتی پر یہ پراکرتک روپ سے پائی جاتی ہے۔ دھرتی کے وایو منڈل میں یہ گیس آیتن کے حساب سے لگ بھگ 0.03% ہوتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کا نرمان آکسیجن کے 2 پرمانو تتھا کاربن کے 1 پرمانو سے مل کر ہوا ہے۔ پرتھوی کے سبھی جیوداری اپنی شوسن کی کریا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا تیاگ کرتے ہیں۔ اس پرکار کاربن ڈائی آکسائڈ کاربن چکر کا پرمکھ اپویہ ہے۔ کاربن کے راسائنک یوگکوں کو کاربنک یوگک کہتے ہیں۔
دوسری اور کارخانے اور گاڑیاں سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اتپادن کرنے والی اور پریاورن کو پردوشت کرنے والی سمجھی جاتی ہیں۔ اس پریوجنا پر کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس پریوجنا کا مکھیہ لکش کاربن ڈائی آکسائڈ کو اوشوشت یا جذب کرنے کے لیے بہت ادھک کشمتا کے ساتھ نینو کاربن کا اتپادن کرنا ہے۔ اس شودھ میں اتری ایران کی ایک استھانیہ ونسپتی کے روپ میں پیروشیا پرسیکا نامک پیڑ کی جھاڑ کو پریوگ کرتے ہیں۔
اس شوت پر کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ نینو سوربنٹ کا نرنتر پریوگ اس کی اپیوگتا کو کم نہیں کرتا۔ اس نینو سوربنٹ کو کارخانوں کے دھواں نکلنے والے پائپ اور گاڑیوں کے سائلنسر یا ایگزاسٹ کی جگہ پر لگا سکتے ہیں۔
दोस्तों, ईरान के रोयान शोध केंद्र के परिणाम देखने से ये बात सामने आती है कि वो दंपत्ति जिनके यहाँ प्राकृतिक गर्भपात हो जाता है या कई बार गर्भपात हो चुका है या समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाता है और अगर गर्भ पहले 20 सप्ताह में प्राकृतिक रूप से खत्म हो जाए तो इसे गर्भपात का नाम दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा गर्भपात होने की वजह क्रोमोसोम या गुणसूत्र में बाधा करार दिया जाता है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो सभी अनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करते हैं। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है।
रोयान शोध केंद्र और मरागा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने स्वयं गर्भपात होने के कारणों का पता लगाते हुए समय से पहले गर्भपात का उपचार करने में कामयाबी हासिल कर ली है और उपचार से भविष्य में कभी गर्भपात नहीं होता और जच्चा व बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ, हमें इजाजत दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारी आज की सेवा अपने अंत पर पहुंच गई है, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। श्रोताओं, हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव पर 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलो हर्ट पर सुन रहे हैं। हम आशा करते हैं हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। तो श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का अब समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।